الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المصدق والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد في سورة الفرقان: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حاضرين المؤمنات، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ہم صحت کی بات کریں گے. کل ڈونٹس کی والی بات تھی، ڈونٹ ڈو دیٹ والی تھی. یہ نہیں کرنا ہے، یعنی کھانے کے بعد چائے نہیں پینا، یہ نہیں کرنا. آج کیا کیا کرنا چاہیے، ڈوز آف گڈ ہیلتھ، کیا کیا چیز کرنا چاہیے تاکہ انسان کی صحت میں اضافہ ہو. تو پہلی چیز جو علماء حدیث کی روشنی میں، یہ ساری باتیں حدیث کی روشنی میں ہوتی ہیں، تو بتاتے ہیں کہ دین میں کھڑے رہ کے پانی پیو. ہو سکے کہ کوئی بھی کچھ بھی پینے کی بات ہو تو دین میں اگر بیٹھ کے پئیں گے تو نقصان نہیں ہوگا. کل جیسی بات نہیں ہے کہ رات کو کھڑے رہ کے پئیں گے تو نقصان ہوگا صحت میں. دین میں کھڑے رہ کے اگر ہم پانی پیتے کچھ بھی تو نقصان نہیں ہوگا، مگر اگر بیٹھ کے پئیں گے تو صحت میں اضافہ ہوگا، بہتر صحت بہتر بنے. تو کوشش کریں کہ دین کے وقت جو کچھ بھی پینا وغیرہ ہو تو وہ کھڑے رہ کے پیا جائے. دوسری بات، جتنا ہو سکے اگر بارش کا پانی ملے تو بارش کا پانی زیادہ سے زیادہ پینے سے بہت سے امراض، بہت سے ڈیزیز کا علاج ہے، بہت زیادہ اس میں شفا ہے. تو بارش کا پانی اگر جتنا جمع کر سکتے ہو جب بارش آئے تو وہ بہتر ہے کہ عرصے تک ہمیں ان کو استعمال کر سکے. تیسری چیز جو صحت میں بہت اضافہ کرنے والی چیز ہے کہ بالکل جب پیٹ خالی ہو، ایمٹی ٹمی میں بالکل خالی پیٹ میں ایک کش دانہ کشمش تو معصوم کہہ دیتے کہ حافظہ کو بہت تیز کرنے والی چیز ہے، مگر ساتھ ساتھ بہت صحت میں اضافہ، تندرستی میں اضافہ کرنے والی چیز ہے. اور 21 دانہ کشمش مگر ایمٹی ٹمی میں خالی پیٹ میں تو فائدہ دینے والی چیز. رات کو کبھی بھی خالی پیٹ سے نہیں سونا چاہیے، چاہے کچھ بھی کچھ ڈنر کے لیے لینا چاہیے، کیونکہ صحت میں اضافہ کرتا. اگر خالی پیٹ سے سو جاتے ڈنر کھائے بغیر تو صحت کو نقصان ہوتا ہے. اس سے برعکس اگر کچھ کھانا ضرور کھانا چاہے ڈنر کے لیے سونے سے پہلے، تاکہ ہیلتھ میں اضافہ ہو. نہانے کے بعد اگر کوئی گرم پانی سے نہانے کے بعد پیروں میں ٹھنڈا پانی ڈالا جائے، آخری میں نہا لیا اور گرم پانی سے پیروں پر ٹھنڈا پانی ڈالا جائے تو یہ صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. تو کوشش کریں کہ ہم ان کو یاد رکھیں. کھانا اسی وقت کھائے کہ جب انسان کو واقعی بھوک لگی ہو، تو یہ صحت میں بہت اضافہ ہوگا. صرف وہ رسے کو بیٹھانے کے ریکریشن کے لیے بس کھا لیا، بھوک بھی نہیں لگی، مگر جب بھوک لگی ہو جب انسان کھاتا ہے تو یہ صحت میں اضافہ ہوتا ہے. رات کو سونے سے پہلے ضرور واش روم میں جانا، ہر صورت میں پیشاب کے لیے جانا ہی جانا ہے سونے سے پہلے، یہ صحت میں اضافہ کرنے والی چیز ہے. فروٹس، وہ فروٹس جب جیسے کسی فروٹس کی سیزن شروع ہو، جیسے کسی فروٹس کی سیزن شروع ہو اسی شروع میں ہی کھانا چاہیے، وہ صحت میں اضافہ ہوتا ہے. تو لیٹر آن کی سیزن کے بجائے جو ٹائم آگے جب بڑھ رہا ہے اس کے بجائے سیزن کی شروع میں جو فروٹ نکلا ہے سیزن کے مطابق اس کو فوراً اس کو استعمال کرنا چاہیے، تو صحت میں اضافہ ہو جائے گا. ये सारे खाने पीने का बाद उठने बैठने का बाद बाकी जो सेहत में इजाफा, सोने के लिए भी इंसान सोने के अवकाश का ख्याल रखता है और जागने के अवकाश का ख्याल रखता है तो उनकी सेहत में इजाफा होता है। सबसे हेल्दी नींद, बेहतरीन नींद का टाइम कब शुरू होता है? उलमा ने हदीस की रोशनी में बताया है कि सूरज डूबने के बाद जैसे सूरज डूबा उसमें प्लस 2.5 आवर्स, ढाई घंटा, सूरज डूबने के बाद ढाई घंटे को प्लस करना है तो ये टाइम हेल्दी नींद का टाइम शुरू हुआ। उसके बाद से कभी भी इंसान जल्दी सोने का करे, आज अगर हम अंदाजा लगाए कि 6 बजे का सूरज डूब रहा है, मुझे पता उससे पहले डूब रहा है मगर सिर्फ मिसाल के तौर पर 6 बजे का सूरज डूब रहा है तो 8:30 बजे बहुत कीमती नींद, वेरी हेल्दी नींद का टाइम शुरू हुआ। उसके बाद 8:30, 9:30, इससे ज्यादा बहुत देर न करें। आज तो अभी आजादारी का दिन है, वो तो बात अलग है, मगर 8 दिनों में कोशिश करें हेल्थ की हिफाजत के लिए सूरज डूबने के बाद ढाई घंटे के बाद जितना जल्दी सोएंगे इतना हेल्थ में इजाफा होगा। उठने का टाइम, इसी तरह उठने का टाइम इस्लाम ने बताया है कि सूरज उगने से 2.5 घंटे पहले उठ जाओ। अगर सूरज मिसाल के तौर पर 7:30 बजे सूरज के उगने का टाइम है तो 5 बजे उठ जाना चाहिए। हाँ, लड़कियों के लिए बढ़ता है, उनको देखते हैं एग्जाम के लिए, पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, वाई नॉट चूज दैट टाइम। जो हेल्दी वाला भी टाइम है, स्टडी भी हो जाएगी और उस वक्त हर चीज याद रहेगी, वो टाइम है हाफिजा के लिए बेहतरीन टाइम है, इस्तेमाल के लिए बेहतरीन टाइम है, स्टडी के लिए बेहतरीन टाइम है, बरकत वाला टाइम है। तो दोनों तरफ से 2.5 घंटा, सूरज डूबने के बाद 2.5 घंटा हेल्दी नींद का टाइम शुरू होता है, तो उठने का टाइम सूरज उगने से 2.5 घंटे पहले, 2.5 आवर बिफोर सनराइज। तो ये दरमियानी जो नींद है इंसान की सेहत में तंदुरुस्ती में बहुत ज्यादा मदद करेगी। अब बाकी आदाब हमारे शेजारी खाने के वक्त बाकी आदाब 4 बताइए कि इंसान बाकी आदाब का इफेक्ट जिस्म पे इनके असरार हेल्थ में जरूर आता है। 4 बातें जो शेजारी बताती है कि मारिफत खुदा, रिजाए खुदा, नामे खुदा, शुक्र खुदा। 4 चीजें, पहली चीज मारिफत खुदा। इंसान जब खाने के लिए देखे तो मारिफत खुदा होगी, किसने मुझे ये रिज़्क दिया, उस खुदा को उसकी पहचान है खाने के बैठने के वक्त, जिसने मुझे रिस्क दिया है क्या मैं उनसे उनकी मारिफत हासिल है, मेरे पास उनकी मारिफत है। रिजाए खुदा, जब मारिफत खुदा होगी तो जरूर रिजाए खुदा कि ये खाना मेरे सामने है जो मैं खाने वाली हूँ, इसे अल्लाह राजी नाराज है, कहीं हराम तो खाना नहीं, कहीं नजाकत वाला खाना तो नहीं, खुदा की रिजा होनी चाहिए। जब मारिफत खुदा है तो बीवी फरमाती है फौरन रिजाए खुदा दिमाग में आना चाहिए कि मेरा खुदा मुझसे राजी रहे। फिर नामे खुदा, बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं, आखिर में शुक्र खुदा, खुदा की नेमत का शुक्रिया अदा करें। तो ये 2 चीजें तो हमारे यहाँ राय है कि हम नामे खुदा से शुरू करते हैं, शुक्र खुदा से खात्मा करते हैं, मगर ये 2 बातें जो पहली बता रही है शहजादी हमारी, तो कोशिश करना चाहे कि हर वक्त खाने से पहले खुदा की मारिफत हासिल करें कि खुदा ने रिज़्क दिया है और उनकी रिजा हासिल करने की लिए कोशिश करें।
नारा तकबीर,
नमाज तहज्जुद है, नमाज शब जो है इंसान की सेहत में इजाफा करे, बहुत ज्यादा तंदुरुस्ती देने वाली, हर जिस्म की हर खराबी को खत्म करने वाली और तंदुरुस्ती में इजाफा करने वाली अगर इबादत है तो नमाज तहज्जुद है। तो हर इंसान कोशिश की जाए, खास करके जो बीमार बीमार रहता है उनको अगर खड़े के लिए ना पड़ सके तो मुझसे नमाज तो बैठ के भी जा सकते हैं। चलो बैठ के पढ़े कोश, अगर 11 रकात नहीं पढ़ पाते तो 3 रकात परेशान अभी तक, मगर कोशिश करें कि नमाज शब के लिए जरूर। अगर किसी भी सूरत में ऐसी गोलियां खा रही बीमारी की वजह से कि नहीं उठ पाती है, तो उसके दीन में कजा करे, दीन में नमाज तहज्जुद की कजा करे सेहत की नियत से, तो इंशाल्लाह उनके सेहतों में इजाफा होगा। ये चीजों बहुत जरूरी, आज हमारे तंदुरुस्त का ख्याल नहीं करेंगे तो हमारी इबादतों में भी कमी हो जाएगी, हमारे खिदमत खल्क में नेकियों में कमी हो जाएगी, क्योंकि बीमारी की वजह से हमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा हर वक्त। दूसरे नंबर पे पहला नंबर भी होगा, मगर हाँ मैंने किसी ने कहा है शुगर का, शुगर का इलाज बताए तो ये बता देती हूँ साथ में, जल्दी तेजी से करके टाइम बताए तो बहुत कम होता है। शुगर के मरीज के लिए जो हकीमों ने बताया है और तजुर्बा क्या है, ये सारी बातें जो बताई जाती है मेंबर में, उन लोगों से मेरी मुलाकात होती रहती है कि जिन्होंने तजुर्बा किया है और कामयाब हुए हैं। हकीमों की बात के अमल करना ज्यादा बेहतर है, उसके बजाय सीधा डॉक्टर के पास चले जाना। एलोपैथी की दवाओं में साइड इफेक्ट होते हैं, एक बीमारी जाती तो दूसरी बीमारी जन्म लेती है। कौन कह रहा है? मौला ही कह रहे मौला फरमा रहे हैं कि अगर गोलियां इंसान खाता है, दवाएं खाता है, उसके जरिए दूसरी बीमारियां जन्म लेती है, तो हद तक इम्कान अवॉइड किया जाए एलोपैथिक मेडिसिन को, सिवाय बहुत मजबूरी आ जाए। अगर बहुत मजबूरी आ जाए उसमें दुआएं दम करना चाहिए, अगर साइड इफेक्ट ना हो, सूरह फातिहा दम करना चाहिए या शाफी दम करना चाहिए या सलामो दम करना चाहिए, बाबू नवाई गुस्सा न जाफर को पुकारना चाहिए, जो हमारा साथ में इमाम खास तंदुरुस्ती के लिए इमाम है, तंदुरुस्ती को चाहे तो उनके वसीले से दुआ की जाए, उनको पुकारा जाए तो बीमारियां दूर हो जाती है। बाबू लवाई के नाम पे, साथ में मां के नाम पे कुछ पैसा निकाला जाए, कुछ नवदौलत नमाज पढ़ी जाए, दुरूद या कुरान की तिलावत की जाए, उनको हदिया करके उनका वसीला करके तो बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो हमें इनकी कोशिश करनी चाहिए, फिर दुआओं में कदम करके फिर दवा खानी चाहिए ताकि अल्लाह उसमें शिफा डाले और मासूम की बरकत मजीद शिफा में इजाफा हो जाए। तो ये चीजें जरूरी है, दवा के साथ दुआ, तो फिर अल्लाह और मासूमीन हमारी मदद करेंगे। तो हर तरीका उनको अवॉइड करना चाहिए, मजबूरी में तो फिर दम करे, कुछ ऐसे ही ना खाए, वुजू के आलत में रहे, किबला रुख बहुत जरूरी, हर काम अच्छा काम किबला रुख करे, वुजू के आलत में हो, किबला के सामने खड़े हो कि दवाएं खाए, उसमें इफेक्ट होगा। जो शरीर की बातें जो हम अंजाम देते हैं, याद रखना अगर हमारा बच्चियां लेसन करते स्कूल का वर्क, उनके टेबल उनके डेस्क ऐसे रखो कि उनका खिल्ला रखो, बताएं हमारे बच्चियों को कि वुजू करके अपना एग्जाम का स्टडी करें, स्कूल का दिन किबला रुख वुजू के साथ। हमारे उलमा जिनको गैस के प्रॉब्लम हो रहे थे उसके बावजूद वुजू जब टूट जाता था बार बार वुजू करके मुतालिया करते थे, क्योंकि उस मुतालिया का क्या फायदा जिन वुजू के बगैर हो। तो बच्चियों को इनकी आदत डालो, इसकी हाफिजा तेज होता है, किबला रुख होके हर काम करने से रूहानी तकबीर पैदा होती है। तो खाना पकाने में अगर किचन में आप पका रहे हो कुछ, आपको किबला मिल रहा है तो कोशिश करेंगे खाना पकाते हुए वुजू हो और किबला रुख हो। तो जितना हो सके सारे अच्छे काम वुजू की आदत और किबला रुख, सारे हमारे जिस्मानी रूहानी फवायद बढ़ते चले जाएंगे। तो पहले तो ये बात है, अब शुगर मरीज के लिए जो हकीमों ने बताया बहुत तासीर है इसमें, पहली बार इलायची हर खाने के बाद, लंच खा लिया डिनर खा लिया उसके बाद एक इलायची बड़ी छोटी जो भी हो उसके मुंह में रखिए, चबाते चले जाए उसका सारा रस पूरा उतर जाए, उतरना चाहिए। छिलके जो है इस छिलके को या तो फेंक दे या तो उतार दे, दोनों जाए दोनों इजाजत है, छिलके के साथ दबाना है। तो ये दो चीज के लिए बहुत फायदा है इलायची खाने के बाद, एक एसिडिटी प्रॉब्लम और एक शुगर का मरीज डायबिटिक प्रॉब्लम, ये दो के लिए खाने के बाद इलायची जरूर मदद करेंगी। कमी होती चली जाएंगी इंशाल्लाह। एक औरत को कहती है कि मैंने सिर्फ ये अमल करने से उनकी एसिडिटी का प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो दारोमदार अकीदा कितना है और कितना रेगुलरिटी में हम खाते, एक दिन खाए दो दिन भूल गए, दो दिन खाए तीन दिन भूल गए, उसके असर नहीं होते मुस्तलसी। हर कोई ये 40 दिन 40 का अदद बहुत अहमियत रखता है। हर कोई चीज 40 दिन होता है प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब जाके कुछ फायदे फवायद बदल आएंगे। तो पहली चीज शुगर के मरीज के लिए खाने के बाद इलायची। दूसरी चीज लहसुन का पानी, लहसुन को पीस के उसको निचोड़ उसका पानी, थोड़ा सा पानी, उसने नाम भी लिखा है कि एक चम्मच के कितना। तो लहसुन का पानी, लहसुन को मैश करके उनका पानी निकाल के शुगर का मरीज को दिया जाए, तो सिर्फ शुगर के मरीज के लिए। और तीसरी और आखिरी चीज डायबिटिक पेशेंट के लिए बताया गया है वो है धाना, जिसको हम गुजरात में मेथी कहते हैं। आप लोग धाना कहते हैं उर्दू में, चाहे मेथी को मेथी दाना, मेथी दाना, मेथी दाना। तो मेथी दाना जो है उनको उनकी एक चमचे विंटर के लिए बेस्ट खिला दे, क्योंकि मेथी दाना गर्म है, बहुत गर्म है, तो विंटर में इसका इलाज किया जाए। समर में बहुत ज्यादा गर्म लगेगा, तो विंटर में इसका फायदा पूरा लिया जाए तो इशारा जड़ से डायबिटीज खत्म हो जाएगा। मगर कैसे खाए, एक चमच सुबह निहार मुंह, सुबह सवेरे निहार मुंह, कोई चीज खाए बगैर एक चम्मच एक टी स्पून उसको चबाना है या उसका पाउडर करके खाना है। या फिर बताए खाने से एक घंटे पहले लंच खाना है, अगर पढ़ करें लंच आपको 1:30 बजे खाना है तो 1 घंटे पहले 12:30 बजे ये मेरे खिलाना या पाउडर फॉर्म में या उसे दाना चबाना है, चबाती उतार देना है। तो खाने से पहले 1 घंटे पहले सुबह सवेरे निहारू ये मेथी दाना, बस ये इलाज है डायबिटिक पेशेंट का इंशाल्लाह। फिर हमेशा दब करना पड़ेगा या शाफी या सलाम सुरे फाते या बाबू लबाई को पुकारना है, ये वो हर चीज में आदत ही डाले ताकि उनका जवाब बेहतरीन जवाब हासिल हो। और दूसरे नंबर पे फिजी मसाइल के लिए आज शुरू हो रहा है मीराज के मसाइल। बच्चियों के लिए जरूरी है कि उनको अभी से बताया जाए, मुझे पता है बड़े को खूब पता है और कई सालों से मिम्बर में भी बयान हो हुआ है, मगर मैं इस दफा मैंने सोचा है केस स्टडी देगा, एक एक दिन केस स्टडी, जब तक ये टॉपिक अच्छी तरह लोगों को समझ में आ जाए जब तक मैं एक टॉपिक को नहीं छोड़ूंगी। हाँ, आपके कुछ सवाल होंगे तो आप सवाल भेजते जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह मुंतजमी को दे देंगे तो फिर मुझ तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं आज एक मिसाल दूंगी, जैद नाम एक शख्स है, उससे इंतकाल हुआ, जैद नाम शख्स का इंतकाल हुआ। उनका बेटा, उनके दो बेटे हैं हसन और हुसैन, उनकी दो बेटियां हैं ज़ैनब और उनके कुलसुम, ऐसे नाम लेते ताकि याद रहे तो मिसाल देने में मेरी आसानी। बीवी जो है बीवी को छोड़ा है वो माँ बाप भी जिंदा है, माँ बाप भी है जैद का और बीवी भी है और दो बेटे दो बेटी और जैद का इंतकाल हुआ। अब शरीयत इसका फैसला कैसे करती है? सबसे पहले देखा जाएगा कि जैद का कोई माली कर्ज है, किसी से लोन लिया है, खुंस का कर्जा उस पर है, कोई माली कर्ज घर वाजिब था और नहीं किया है, तो उनका माली कर्ज पूरी मिलियन से पहले निकलेगा। सबसे पहले उनका माली कर्ज, माली जिम्मेदारी, नमाज रोजा नहीं, नमाज रोजा जिस्मानी जिम्मेदारी, नमाज रोजा अगर नहीं भी कर रहा है तो कभी नहीं पूरी मिलियन से नहीं निकलेगा। क्यों? या तो बड़ा बेटा है उनकी जिम्मेदारी है, या तो उनको जो वसीयत एक तहाई तक करने की इजाजत है, वन थर्ड का जो वसीयत करने की इजाजत है उसमें वो लिखेगा कि मेरी नमाज इतनी पढ़ाई जाए मेरे मरने के बाद, एक में रोजा रखा जाए। क्योंकि नमाज और रोजा जब तक इंसान रूह जिस्म में है, चाहे कोमा में क्यों न चला गया, उसकी नमाज और रोजा कोई शुरू नहीं कर सकता। कजा रोजा कजा नमाज मरने के बाद ही शुरू होता है, तो वो एक तहाई में वसीयत कर सकता है जिसको इस्लाम दे रहा है, शरीयत दे रही है, एक तहाई। मगर बोली नहीं चलते, कभी नमाज पढ़ने के पहले नहीं निकलेंगे। माँ की जिम्मेदारी, हर माँ की जिम्मेदारी है। और रोजे के कफारा और फिदा भी नहीं निकलेगा, क्यों? रोजे का कफारा और फिदा अल्लाह के नजदीक वो जिस्मानी जिम्मेदारी है, रोजे के साथ निस्बत है रोजा जो जिस्मानी जिम्मेदारी है, अब उसको अंजाम नहीं दिया तो कफारा और फिदा है, इसीलिए वो माली जिम्मेदारी में नहीं है बल्कि जिस्मानी जिम्मेदारी। मगर हज से खून से किसी मुसलमान का कर्ज उसकी गर्दन पे, उसको सबसे पहले निकाला जाएगा। अब फर्ज करें कि देख कोई गर्दा नहीं था, नहीं खुश था, नहीं हज पीने वाली हुआ था, या तो वाली हुआ था तो उसने कर लिया है। तो एक आसान मिसाल लगेंगे 90,000 इजी टू डिवाइड फैक्टर, 90,000 रुपीज छोड़ के बाद अब वह एक तिहाई ही उनको हक है कि वो वसीयत करे, और जो वसीयत करके मरता है मन मात बेवसीयत मात शहीदा, शहीद मरा मन मात बेवैर वसीयत मात मैत जाहिलियत, ये जो वसीयत के बगैर मरा वो जाहिलियत की मौत। ये अल्फाज इतने सख्त है, वो ही अल्फाज इमाम के लिए है कि मन मात बे मतलब क्या इमाम का मान, जो मर गया अपने इमाम को पहचाने बगैर मरा वो जाहिलियत की मौत मरा। बिल्कुल वही अल्फाज दोनों हदीस रसूल है, अल्फाज वही है कि जो वसीयत के बगैर मर गया वो जाहिलियत की मौत। यानी इतने सख्त अल्फाज बता रहा है कि कितना अहमियत है इस्लाम में कि वसीयत नामा लिख के मरना जाए तो शहादत की मौत मिलेगी और जिहालत की मौत से इंसान बच जाता है। हर एक का वसीयत नामा होना ही चाहिए। मेरे पास फोटो कॉपी भी है कि अगर किसी को लिखना है इतना आराम से इंसान लिख सकता है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह उस जमीन तक पहुंचेंगी, जिसको इंटरेस्ट होगा तो फोटो कॉपी करवा के आप फिर उसको लिखना फौरन शुरू करें। चाहे एक गले की चेन क्यों ना हो, कोई ये ना कहे मेरे पास तो कुछ माल नहीं है, औरत के पास एक जेवर तो होता है, कुछ एक चेन तो हो गले की, एक अंगूठी वो भी ठीक है, शहादत की मौत हासिल कर। अगर देर में वसीयत की कि मेरे एक तिहाई जो है अभी 90,000 में एक तिहाई 1/3 भी 30,000 तो 30,000 तक उनको वसीयत की इजाजत थी। उसमें लिखा कि 30,000 मेरे तबलीग के दिन में देना, हाई सवा दीन की तबलीग जहां दीन फैलता है वहां दिया जाए या फ्रॉड भी ना होता। तो दीन जहां फैल रहा है वहां वसीयत की कि मेरे एक तिहाई तबलीग के दिन में दिया जाए तो 30,000 निकल गया उनकी वसीयत के मुताबिक, बाकी रहे 60,000, बाकी रहा 60,000। अब जेद मरा उनके उनके तमाम पहने हुए लिबास, जो लिबास वो पहन चुका है, चार चीज को हिबवा कहा जाता है, चार चीज को हिबवा कहा जाता है, हिबवा चार चीज में शामिल है उसमें मरहूम का कुरान जिसका अक्सर तिलावत करता था, मरहूम की अंगूठी जो अक्सर पहनता था, अगर मरहूम के पास तलवार थी तो तलवार, और चौथी चीज मरहूम के तमाम लिबास पहने हुए लिबास, जो लिबास पहन चुका वो किसी का हक नहीं, सिर्फ और सिर्फ बड़े बेटे का, हसन का होगा, दो बेटे थे हसन और हुसैन, चाहे जैनब और कुलसुम पहले बेटियां थी फिर बेटे हसन और हुसैन, मगर बेटों में से जो बड़ा बेटा, तो ये बेटा हसन को मिलेगी चार चीजें। अगर नए लिबास से जो बिल्कुल पहना नहीं है वो सारे उम्रता का हक होगा, मगर उसे खून वाजिब हो जाएगा, क्योंकि मरहूम की खून की तारीख बदल जाती है, उसकी मौत की तारीख खून की तारीख बदल जाती है। अगर एक महीने में ये लिबास आया था, एक महीने में पहरा लिया था, कुछ ट्राउजर लिया था, मरा महीने के बाद नहीं है अभी पहना नहीं था, उसका खून देना पड़ेगा, फिर उम्रता में तकसीम होगा, डिवीजन होगा, मतलब पहने हुए लिबास हसन का होगा जो बड़ा बेटा है जेल का। अब ये चीज चार चीज के बाद अलग हो गई। अगर हसन नाबालिग है, अब हसन को बाप का लिबास मिला, हसन को पूरा नहीं हो रहा है, उसकी मर्जी सखावत करे, जिसको देना है छोटे भाई को देना है, रिश्तेदारों को देना है, उसकी मिल्कियत है, मगर जेल का बेटा हसन नाबालिग है तो उसको लिबास को रखना पड़ेगा। नाबालिग सखावत नहीं कर सकता, या फौरन राबेता कायम करे किसी मुश्तरी दल के वकील, हसन नाबालिग है, उनके लिबास हमें गरीबों को देना है, रिश्तेदारों को देना है, मगर है नाबालिग, उनकी इजाजत बेकार। वकील या मुश्तरी के फौरन राबेता किया जाए, हमें इतना साल नहीं रखना, अभी तो अच्छे साल का है हसन। हम जब बालिग हो 12-13 साल में, जब बालिग हो जब तक हम कपड़े को रखे रखे, बेहतर है उसको या बेचे, उसका पैसा अलग कर दे या किसी गरीबों को दे। मगर क्योंकि हसन की इजाजत बेकार है, या उनका वली जो है वो तो मर गया, पर दादा जीता है, दादा उनका वली है। दूसरा दो वली होता है हर बच्चे का, एक बाप एक दादा, बस दो ही वली होते हैं। अगर देख मर जाए तो बाप जिंदा है दादा जिंदा है, तो दादा इजाजत दे सकता है बच्चे की तरफ से कि गरीबों में बांटा जाए, मगर दादा उसे देने मर गया नहीं है, तो फिर मुश्किल होते वकील की इजाजत है। ये नाबालिग का माल है, हमें गरीबों में तकसीम करना है, तो वो जो राय है वो करना होगा। अब ये जेल की ये बात है, अब 60,000 है, 60,000 में छठा हिस्सा माँ को मिलेगा, दो बेटे और दो बेटियां, तो 60,000 में से डिवाइड बाई 6, डिवीजन बाई 6 होगा, तो 10,000 माँ को मिलेगा, 10,000 बाप को मिलेगा, जेल के माँ जेल की बाप, छठा हिस्सा छठा हिस्सा, बीवी को 8वां हिस्सा। देखो निवास का ज्यादा ताल्लुक रिश्तेदार से है, खूनी रिश्तेदार, माँ बाप को ज्यादा मिल रहा है बीवी से, बीवी को आसमान हयात में जो देना ही दे सकता है, बीवी को हयात में जो देना ही दे सकता है, मगर मरने के बाद में शरीयत नाफिज होगी, तो उनको आसमान यानी 60 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो 7,500 होंगे, 7,500 ये बीवी को देगा, माँ बाप को 10,000 10,000, बीवी को 7,500, 60,000 डिवाइड बाई 8 क्योंकि बच्चे है। अब बाकी जो रहती थी, बाकी जो बच गया वो बेटे को 2 हिस्सा, बेटी को 1 हिस्सा, डिवाइड बाई 6 होगा क्योंकि 2 बेटे के 2, दूसरे बेटे के 2 हिस्सा 4, एक एक बेटी का 5, 6 डिवाइड बाई 6 होगा, बेटी को 1-1 हिस्सा मिलेगा, बेटे को 2-2 हिस्सा मिलेगा। अब इसमें कुछ बातें बाकी है, मगर क्योंकि वक्त हमारे पास कम होता है, घंटा एक चीज से भी गुजर जाता है, तो इसीलिए अभी कल मजीद इसमें थोड़ी सी बातें करनी पड़ी, चलो औलाद नहीं है तो क्या थोड़ा इजाफा होगा, ताकि हमारे पास एक एक चीज का बयान करने के लिए वक्त इतना इतना कम होता है। अभी तीसरे मरहले में जनत जामिया, अल्लाह अकबर, किसी की ताकत नहीं है ज्यादा से जामिया की तारीफ और फजीलत बयान कर। जब मराजे तकलीफ कह रहे हैं, जब मराजे तकलीफ कह रहे हैं कि उनकी फजीलत उनकी अहमियत बयान से बाहर है, क्या मारे पते 12 इमाम, 12 इमामों की मारे पते इतनी अजीम अंदाज में कि इंसान ज्यादा से जामिया को समझे, 12 इमामों की मारे पर हासिल करे, नम जब नहीं कोई दीवान की 12 इमाम के पीछे दीवान बन जाए, ये ज्यादा कबर कारनामा सबसे बड़ा एहसान इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का है जिन्होंने ये तालीम दी। हम कुछ इमामों को कम याद करते हैं, ये हमारी बदकिस्मत है, कभी हम कहते हैं बड़ी विलादत है, कभी कहते हैं छोटी विलादत है, 9वें इमाम 10वें इमाम की विलादत है तो मजमा छोटा नजर आता है, 75 की विलादत शहादत हो तो मजमा बड़ा बड़ा होता है, क्या जुल्म नहीं है? क्योंकि ज्यादा भी जामिया देने के सबका सेहत बराबर है, वाकिदा ज्यादा भी जामिया दर्द दे रहा है, सब एक रूह से एक नूर से है, तो आप सोचिए जो जितना जो अली अली की किफात है एक एक मकसद में वो ये ज्यादा से जानने के लिए 12 इमामों की किफात है, 12 इमामों की मारे पड़े, तो अंदाजा लगाए हम हर एक इमाम की विलाद और शहादत जोश और खरोश बनाना चाहते, जैसा ईद कबीर मनाते जैसा सत्र रबी अव्वल मनाते, ऐसे 9वें इमाम 10वें इमाम की विलादत और शहादत मनानी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे को मारे पर हमारे मजलूम इमाम होगी। अगर इमाम हसन इमाम हुसैन के जमाने में होते तो यजीद का मुकाबला इसी तरह कर लेते इमाम हुसैन ने क्या, अगर इमाम हुसैन इमाम हसन के जमाने में होते तो वही सुलह करते जो इमाम हसन ने किया। तो जमाना के अनुसार हर इमाम ने इस्लाम के लिए अल्लाह की खुशनूदी के लिए कुर्बानी पेश की है। ये जारी जामिया ही गवाही दे रहा। अब दसवें इमाम के पास मोमिन चाहता है मूसा इब्ने अब्दुल्ला के मौला आपको हमें बेहतरीन और कामिल अंदाज में बेहतरीन और परफेक्ट वे में आपको हमें सलाम करना हो, आपके रोजे में किसी भी इमाम के रोजे पे आप घर बैठे सलाम करना हो तो मुझे एक ही तालीम करो कि जो बेहतरीन अंदाज हो आपको सलाम करने का सैल्यूटेशन का, मुझे वो तालीम करो। और दसवें इमाम ने मूसा इब्ने अब्दुल्ला को ये ज्यारत की तालीम की कि ये बेहतरीन और कामिल अंदाज में सलाम कर सलाम किया जाता है। आप देखिए फजीलत मारने तकलीफ क्या बताते अब्दुल्ला तकी मजलिस बागरे मजलिस का बाप बागरे मजलिस सब जानते हयात उलूम बहादुर बड़ी बड़ी किताबें सब उन्होंने लिखी है। उनका बाप तकी मजलिस खुद अपने मेहनत करके बेटे की तरबियत की, बाप की तरबियत करने का हाथ ज्यादा है मां के मुकाबले, इतनी ज्यादा मेहनत की बाकर की तरबियत कर। तो ये तकी मजलिस उनकी हयात जिंदगी में मिल रहा है और खुद बाकी मजलिस बैठ बना के मेरे दिनों में बुजुर्गवार किसी भी मासूम के रोजे में जाते यानी बारह इमाम अगर हमें सौदा को सलाम करना है तो पहले रसूल को पहले अलग से सलाम कर लो ज्यादा और इसी साथ इमाम को सलाम कर
बस उनका आखिरी दिन था मौत का।
वहां ज्यादा से जाने शुरू, ऐसे तो दवाई 18 साल बहस कर ली, ज्यादा से जाने शुरू कर दिया, बिस्तर मौत पे ज्यादा से जाने शुरू कर दिया, पूरी ज्यादा से जानिया बिस्तर मौत पे बढ़ी। और उसके बाद एक एक इमाम का, 12 इमाम का नाम लेना शुरू किया। जैसे 12वें इमाम का नाम लिया, उसकी खुशी में, उसकी ताजीम में बेसाख का उठ खड़ा हो गया, दरवाजे की तरफ भागा। मां जैसे कदमों में गिर रहा है, मौला आइए, मौला आइए, मौला आइए, और यहाँ दम तोड़ा, यहाँ दम तोड़ा, दुनिया से रुखसत हुआ। यानी गोया 12वें इमाम को यकीनन देखा, देखा और जिया और दुनिया से रुखसत हुआ। आप सोचिए कि ये दिल की गहराई के मारे पर अगर दुनिया से मरीज होके जाना है, ये बहुत बड़ी बरकत थी। सलमान फारसी बिस्तर पे थे, ईमान के 10 दर्जे पे पाए, जिसको मिन्नी अपने आगे अहले बैत में शामिल कर दिया गया, वो इसी तरह मरीज होकर दुनिया से गए। इम्तिहान, इम्तिहान होते अच्छे अच्छे लोगों की, बेहतरीन लोगों की इम्तिहान होते। हमारे जैसे लोगों के तो गुनाह का वबाल होता है, हमसे तो गुनाह हो जाता है, मगर ऐसे लोग उनको बड़ा दर्जा बुलंद करने के लिए। तो आप सोचिए कि जारे जामिया कितनी अजीब चीज है, उसके पढ़ने के बाद मौत आ जाए, उसकी क्या कैसी बड़ी शहादत नसीब हुई होगी। ये ज्यादा ने जान के नाते को जो 10वें माह में जो तालीम की, तो तालीम जब की, मुझे थोड़ा कट कर करना पड़ेगा कि मेन मौजू, कभी यहां ज्यादा टाइम दे दूंगी तो मेन मौजू को ज्यादा टाइम दूंगी कि थोड़ा अदर बदल रहेगा। यहां आप देखोगे कि पहली चीज क्या है, गुसल, गुसल से शुरू होते बात। 5 अजीब सिफात है ज्यादा तो जामिया में, कि कितने पाक है 12 इमाम, कितने पापों बाकी जाए, बस कल यहां से शुरू करूंगी क्योंकि अभी मेन मौजू पे जाना है। टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा है, मसाए भी कितनी के है, यहां से कल इंशाल्लाह ज्यादा जामिया की बातें हर रोज थोड़ी थोड़ी होती चली जाएगी। आज मुझे लगता है कि हेल्थ में मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया। अब मौजू हमारा वही आयत सूरह फुरकान की 30 नंबर की, रसूल शिकवा पेश करेंगे कयामत के लिए। काल रसूल या रबी इन्ना कौमी तख्दु हज़ल कुरान महजूरा, मेरी कौम ने कुरान को उठाया मगर फॉरसेक कर दिया, उन्होंने पसे पुश कर दिया। नहीं नहीं इंशाल्लाह हमारा वो गिरो नहीं होगा जिसके लिए अल्लाह के रसूल को शिकवा पेश करना पड़ेगा, हर गीत नहीं, इंशाल्लाह हम तदब्बुर और तफ़सीर करेंगे और करते रहेंगे इंशाल्लाह, मजीद ज्यादा से ज्यादा करेंगे ताकि रसूल को हमारे लिए शिकवा न हो। रसूल दुश्मन हाथ में मजलूम रहे, नहीं हमारे हाथ में हर गिर मजलूम नहीं रहे। सूरह गुजरात की क्या फजीलत है, मैरिज क्या है उनकी मैरिज, अगर कोई सूरह गुजरात का तावीज बनाए घरे में लगता है, अगर उनके घर में कहीं बुरे जीन आ गए हैं, आपको पता है जीन की कितनी शरारत होती है, बुरे जीन शैतान कभी घर में घुस जाते हैं, नुकसान पहुंचाते घर वाले को, कई चीजें चोरी कर देता है, कई क्या नुकसान पहुंचाता है, तो सुनते हैं वो शरीफ जिनों की बात। अगर कोई सूरह गुजरात का तावीज बना के गले में लटका दे, वो सारे शरीफ जीन घर से भाग जाएंगे, हर गीत व रुक नहीं सकते, सब भाग जाएंगे। ये फजीलत सवाल कितना है सूरह गुजरात, कोई एक मरतबा पढ़ता है, एक मरतबा उनका सवाल इतना है कि गोया जितनी अल्लाह ने मखलूक को पैदा की है, चाहे फरमा बरदार हो चाहे ना फरमान हो, सारी अल्लाह की मखलूक 10 गुना जितनी अल्लाह ने खल्क किया उसकी टाइम स्टैंड 10 गुना नेकियों की नामाए आमाल में लिखी जाएगी, दर्ज की जाएगी। अगर एक मरतबा कोई सूरह गुजरात पढ़े, और तीसरी और अजीब बात कि कोई सूरह गुजरात हर रोज एक मरतबा पढ़े, या हर रात या दिन कभी 24 घंटे में एक मरतबा, हर रोज डेली تو وہ قیامت کے دن ظاہری رسول میں شامل ہوگا. گویا ان کو جنت میں ایسی جگہ ملے گی کہ جہاں سے مسلسل رسول کی اجازت کر سکے گا. رسول سے وہ بڑا گہرا کنیکشن نہیں چھوڑے. پہلی پانچ آئے تھے رسول کی اہمیت, ان کا ادب ان کے سامنے اتنا کہ ایلا خمنا نے 2006 میں دشمنوں کے ساتھ کیا کہ اس عظیم پرسنالٹی کا اسٹیٹس کو گرایا جائے. کارٹون کی صورت میں, گندی فلم میں ان کے خلاف, رسول کے خلاف, تاکہ نئی جنریشن ہمارے بچوں کے دماغ میں جو رسول کی عظمت ہے, جو کائنات کا افضل ترین فرد ہے, شخصیت ہے, ان کو گھٹایا جائے, ان کو گھٹایا جائے. نئی جنریشن کو بچے ہیں ابھی, مارک میں رسول نہیں ہے, تو ان کو برین واش کیا جاتا ہے وقت سے در وقت سے ہمارے رسول کی شخصیت کو گرانے کی, توہین کرنے کی دشمنا نے بھی مسلسل کوشش میں کہ کیا مسلمان ریئیکٹ ہو رہے ہیں کہ سوئے ہیں. اگر سوئے ہیں تو مزید کرتے رہیں گے ہم, اگر جاگ رہے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں, واپس رک جاتے, پھر مدت کے بعد پھر شروع کرتے ہیں. کیوں رسول کو پکڑا ہے گیا رات؟ پتا ہے عظیم شخصیت ہمیں سب کو یونائٹ کر رہی ہے, ایک امبریلا کے نیچے رکھنا ہے, چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو, ہم سب بھائی بھائی ہیں. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی. آیت اللہ خامنائی زور دیتے ہیں کہ سنی شیعہ مت کرو, تم سب بھائی بھائی ہو, آپس میں محبت پیدا کرو. دشمن یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہمیں لڑوائے ہمیں, وہ ہمیں لڑتے رہے, وہ کامیاب ہوتے چلے جائے, وہ کامیابی ریسرچ کرتے چلے جائے, ماڈرن ٹیکنالوجی میں واہ واہ کی ہوتی رہے, اور مسلمان لڑنے میں بیزی رہے اور پیچھے چلے جائے. اس میں یہ مشغول کر دو ان کو, تو ذاتی رسالت کو پکڑ لو, ان کو ان کے اسٹیٹس کو گراؤ, تو گر جائے گا. ایک امبریلا کے نیچے جو یونیٹی ہو سکتی ہے ان کو توڑ کر دو. کہیں کہہ دو کہ ملاد بدت, کہیں کہہ دو آزادی شرک بدت, جس جہاں سب یونائٹ ہوتے اسی ادارے کو کاٹو, اسی اجماع کو پکڑو تاکہ لوگ منتشر ہو جائے, اس کے دماغ ڈر جائے کیا واقعی شرک ہے, کیا واقعی بدت ہے, ڈر جائے. مگر جس کے پاس مارے پتے وہ کبھی نہیں گھبرائے گا, کبھی نہیں کرے گا یہ شرک, کبھی نہیں کرے گا یہ بدت. تو یہ دشمن اپنی سازش رہی. آیت اللہ خامنائی 2006 میں انہوں نے اعلان کیا, یہ توحید پر توحید کر رہے ہیں, یہ سال رسول اکرم کا سال قرار دیتا. پورا 2006 اور سارے مسلمانوں شہروں میں پیغام بھیجا کہ 2006 رسول کا سال ہے. بچوں کو ہر ادارے میں, ہر مدرسوں میں رسول کا کثرت ذکر کیا جائے, ان کی فضیلت, ان کے اخلاق, ان کی تبلیغات, ان کی محنت, ان کی مشقت, سارے کا ذکر کیا جائے تاکہ ہماری نوجوان نسل پریشان ہے رسول کی شخصیتوں کو, دشمنوں کی سازشوں کو اسٹرائک کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, ہنگامہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, بلکہ نقصان ہوتا ہے, لڑنے جھگڑنے سے کچھ نہیں ہوتا. نہیں, مگر اس شخصیت کا علم بڑھاؤ, معرفت دو, استعمال جمع کرو بچے کو اسکولوں میں, مدرسہ تو مدرے کا وہ جگہ ہے جو بہترین کام کر سکتی ہے, کیونکہ ان کو ان کی لینگویج میں سمجھایا جاتا ہے, ان کی ایج کے مطابق بتایا جاتا ہے. چھوٹے بچے کا انداز الگ ہوتا ہے, بڑے بچوں کو بتایا کا انداز الگ ہوتا ہے, مگر مجمع میں یہ نہیں ہو سکتا. مجمع میں سب مدرسوں میں سب ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں, تو کبھی ہائر معیار میں بات ہو جاتی ہے, تو اسی لیے بچے کچھ بات نہیں سمجھ پاتے, مگر مدرے کا بھی ہر بات سمجھ لے پائیں. تو زیادہ سے زیادہ رسول کی معرفت کروائی جائے تو یہی دشمنوں کی سازشوں کو نہیں تو نابود ہو جائیں گی, تو بھائی چارہ ہمارے میں بڑھ جائے گا, سنی شیعہ ایک ہو جائے گا, ہم سب ایک ہیں, جب کعبہ ایک ہے, قرآن ایک ہے, رسول ایک ہے, اللہ ایک ہے, کیوں ہم الگ, کون ہمیں الگ کر رہا ہے؟ یہ دشمن آ رہے اور ہم نادانی کے انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں, غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں, دشمن ہمیں لڑاتا جا رہے. نہیں, یہ سورہ ہمیں سب سے بڑا بھائی چارہ کا سبق دے رہا ہے. یہ سورہ رسول کی شخصیت پہچانا جا رہا ہے. पहचान पाने आने आने तो पता है कि सूरा के जबी इतना ज्यादा सवाल नासिर मकारे की शिराजी जबी भी कुरान की तफसीर में सूरे दर सूरा ये एक ही जुमला कहते जबी भी देखो किसी सूरे का पढ़ने का सवाल बहुत ज्यादा है किसी सूरे के फवायद बहुत ज्यादा है तो समझ लेना कि उसकी अमल में राम होना है तब ये फवायद हासिल अमल मेरा होना है जो मुश्किल है वो जिहाद है अमल मेरा होना है जब इतना सवाब और उनका मकाम बढ़ जाता है तो इनसे इंशाअल्लाह हम उनके गौर और फिक्र करेंगे सूरे के इन दिनों में हमें पता चलेगा कि सूरे में कितने फवायद है फौरन दाते रिसालत अदब पहली आयत की खिताब है या अय्युल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन अल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम पूरे कुरान में तीन सूरे जो या अल्लज़ीन आमनू से शुरू हो रहा है यानी एक फखर है मोमिन को एक मोमिन तू तेरी शख्सियत को तो पहचान खुदा पहले तुझे खिताब कर रहा है तेरे से गुफ्तगू कर रहा है नहीं कहा या बनी आदम तमाम आदम के औलाद नहीं या अय्युन्नास नहीं कहा या इंसान नहीं एक कुल रसूल तो कह दे नहीं या अय्युल्लज़ीन आमनू ए ईमान वाले वालों ईमान ए अहले बैत के मानने वाले डायरेक्ट खिताब है और कितनी अजीम बात है इस सूरे में पांच मरतबा या अय्युल्लज़ीन आमनू पांच मरतबा शुरू हो रहा है तीन सूरा जिसमें या अय्युल्लज़ीन आमनू से शुरू हो रहा है दूसरा है सूरा अल-माईदा पांच नंबर का सूरा या अय्युल्लज़ीन आमनू से शुरू हो रहा है साठ नंबर का सूरा सूरे मुंतहिना या अय्युल्लज़ीन आमनू से शुरू हो रहा है और तीसरा ये सूरे मुजरा जो हमारी टॉपिक है तीनों सूरे की आप देखेंगे या अय्युल्लज़ीन आमनू से शुरू हो रहा है ये किसके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मुसलमान का कॉन्स्टिट्यूशन मुसलमानों को यूनाइट करना मुसलमानों को एक अम्ब्रेला के अंदर मुसलमानों का लिए उनकी उनकी हुकूमत किस तरह होनी चाहिए वगैरह उनके हुकूक इसकी बात कर रहा है या अय्युल्लज़ीन आमनू देखो कितनी बड़ी बात है तो ये तीन सूरत तो पता ही चला कि इस सूरा में तो खूबी से पांच मरतबा 18 नंबर आयतें हैं पांच मरतबा खुदा हमें डायरेक्ट खिताब कर रहा है अल्लाह के नाम तो ये पहली आयत में तो खुदा रिस्पेक्ट की बात कर रहा है लाज नहीं होता है यदि अल्लाह कदम आगे न बढ़ना अल्लाह और रसूल अदब कभी आगे न बढ़ना जाहिरी तौर पे बातिनी तौर पे कभी उनकी नाफरमानी न करना रतकुआ तकवा क्या है ये सूरे में तकवा ही तकवा नौ जगह पे तकवा का पैगाम है 9-18 आयत है नौ जगह तकवा है तकवा का पैगाम कितना अजीम सूरा यहाँ अल्लाह कैसे हमारी तरबियत कर रहा है या लेकिन आमन करके रिस्पेक्ट अदब अदब रसूल के आगे अदब पहले खुद अदब से शुरू करता है या लेकिन आप एक प्यारे अल्फाज में किताब करता है मोमिनों मैं अदब से शुरू करता हूँ तुम्हें किताब कर रहा पता चला पहला सबक कि जब हम किसी से भी बात करें और चाहते हैं कि हमें वो रिस्पेक्ट करें तो आधार हमें हमारे से बनेगा हम रिस्पेक्ट करेंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा बच्चों के साथ कैसे बातचीत किया जाए रिस्पेक्ट से बच्चों से बात करेंगे तो बच्चे हमें रिस्पेक्ट देंगे वो बच्चे से बदतमीजी से बात करेंगे गुस्से से बात करेंगे बच्चा वही रिस्पेक्ट करेगा तो तरबियत औलाद में ये बहुत बड़ा दखल है अल्लाह हमें तरबियत दे रहे हैं मैं तुम्हें रिस्पेक्ट से अदब से खिताब कर रहा हूँ फिर कह रहा हूँ कि तुम अदब में आओ मेरी अदब करो रसूल की अदब करो तो तेरे आगाज हमें हमारी तरफ से करना पड़ता है बस कल से वो जारी रहेगा वक्त बहुत तेजी से गुजर जाता है मसाइल के दिन है तो पता ये चला कि ये सूरा भाईचारा का सूरा है जो चीजें भाईचारा में इजाफा करती है ये सूरे बयान करता है जो गुनाह जो बातें जो बदअखलाकी जो भाईचारा तोड़ तोड़ देता है जो मोहब्बत को टुकड़े टुकड़े कर देता है नफरतें पैदा करता है उनसे दूर रहने का हुक्म दे रहे हैं सूरत क्योंकि पूरा इस्लाम मबनी है मोहब्बत पे हलल इस्लाम इलल हुब इमाम फरमाते इस्लाम मोहब्बत के अलावा कोई और मजहब है अदीन वल्हुब हुव दीन दीन मोहब्बत का नाम है मोहब्बत दीन का नाम यानी दीन का स्लोगन है मोहब्बत दीन का स्लोगन है मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत करो उनकी मखलूक से मोहब्बत करो पूरा मतलब इसमें समझा जा रहा है सोचे ये मोहब्बत इंसान मोहब्बत का भूखा होता है एप्रिशिएशन इस्लाम का एप्रिशिएट करो ये जादू है एप्रिशिएट करो किसी को छोटा सा काम किया फौरन एप्रिशिएट करो वो और मजीद करता चला जाएगा। ये इस्लाम का कानून है, बस इतना मीठा मजहब। इंशाल्लाह ये सूरा में बहुत बातें सिखाएगा, इंशाल्लाह हम अमल दे रहा होंगे तो अल्लाह का हक होगा। हम आए सब सुनने के लिए, कार लेके आए, मगर क्या नियत होनी चाहिए? हुसैन का मकसद, जिस मकसद के लिए हुसैन ने भी अर्जी कुर्बानियां पेश की, जिस मकसद के लिए जैनब ने भी अर्जी कुर्बानियां पेश की, वो मकसद हमारे हाथ में आ जाए, बस वो मकसद थे हम सबसे बड़े। हाँ, फातिमा को पुरस्कार देने के लिए भी आए हैं, इमाम जमाना को पुरस्कार देने के लिए भी आए हैं, तमाम मासूम को पुरस्कार देने के लिए भी आए हैं, गिरिया करने के लिए भी आए हैं, अजरे इशारत का सिला देने के लिए भी आए हैं, मगर इन सारे बातों से अफजल तरीन चीज है कि जिस मकसद के लिए हुसैन ने कुर्बानी दी उसको नजर पे रखना है, उस पर नजर पे रखना है। बस कल हमारी गुफ्तगु मसाइल यहां तक पहुंची कि काफिला तैयार हुआ, जाने के लिए तैयार हुआ, ज़ैनब को शान और शौकत से सवार करवाया गया। अभी तो रिवायत बता कि काफिला कुछ आगे बढ़ा, पता चला कि फातिमा सुग्रा पीछे पीछे आ रही, पता चला कि फातिमा सुग्रा पीछे पीछे, मामूसिन ने काफिला को रोका लिया। आए फातिमा सुग्रा के पास, तो रुक्सत हो चुकी थी बेटा, कहां मगर दिल भर के नहीं हुआ, दिल भर के अभी एक बार दबा और सबसे रुक्सत हो, आखिर में अली हजरत आवाज की बात आती, मादर की नामी अली हजरत मुझे देता, 18 दिन का ही अल्लाह मुझे दे दो, मैं खुद सफारत की देखभाल करूंगी, खिदमत करूंगी, मेरा दिल उसके तले बह जाएगा, मैं मजूला जूला आऊंगी की खिदमत करूंगी। मेरे बाप मेरा ये बच्चा अपने मादर के नहीं दे सकता, सब सुंदरा का विस्तार कर दिमाग मुझसे आगे बढ़े, बच्चे को बाबा जिसके हाथ में खुद अजर अजय होता है, तमाम दिया एक के बाद दिखा कोशिश कर रही है अजर उनके हाथ में आ जाए, मगर ये उनसे बच्चा मगर ऐसे नहीं समझेगा, वो यह समझ गया था सुगना की बुलाकर नाम नहीं बोलने वाली है, जब कोई बुलाता था तो सुना कर नाम को पकड़ लेता था, आखिरी बार उसे आए
Hussein, Hussein.
Hussein, Hussein.
Hussein, Hussein.